نحمده ونصلي إلى رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. एक सवाल आया है कि किसी बुजुर्ग के मजार पर जाकर उन साहिब मजार बुजुर्ग से किस तरह मुलाकात की जा सकती है और कौन सी एक्टिविटी करना होगी, मेहरबानी फरमाकर थोड़ी वजाहत कर दें। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके मजारों पर जाकर फातिहा पढ़ने के दौरान जो मुलाकात होती है उसे कशफुल कबूर कहते हैं। उसमें होता यह है कि इंसान को अगर ये मालूम न भी हो कि इस कब्र में कौन है, तो अगर कोई साहब ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की रहमत हुई है और उन्हें कशफुल कबूर अता फरमाया है रब ने, तो उस अहले कब्र से उनकी मुलाकात हो जाती है। इस मुलाकात को कशफुल कबूर कहते हैं। इसमें गुफ्तगू भी होती है और फिजिकल मुलाकात भी, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये एक लंबी रियाजत के बाद कशफुल कबूर हासिल होता है। जैसे मैं पहले अर्ज किया करता हूं कि इंसान की अमाल उनकी इब्तदा सोच या ख्याल से होती है। तभी जब हम इंसानी जहन के बारे में यहां गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने अर्ज किया था कि इंसानी जहन को अल्लाह ने तीन कुवतें अता फरमाई हैं। एक कुवत तखय्युल है या कुवत ख्याल है, एक कुवत अदराक है और एक कुवत हाफ़ज़ा है। इनमें सबसे ज्यादा अहम कुवत तखय्युल है। साइंस में भी हम जितनी चीजों से आज इस्तफादा कर रहे हैं, अजीब बात यह है कि इनमें कोई भी ऐसी ईजाद नहीं है जिसका ख्याल मुख्तलिफ मुसन्नफीन ने अपनी किताबों में उस ईजाद के वकू में आने से कई दहाई पहले न जाहिर किया हो। सबसे पहले किसी मुसन्निफ की कुव्वत तखय्युल ने परवाज उस हद तक की कि उन्होंने एक तखय्युल पेश किया कि इस किस्म की एक मशीन है जो इंसान के लिए काम करती है। तो जब वो ख्याल इंट्रोड्यूस हुआ तो उस जमाने के लोगों ने हर मुसन्निफ का इस बात पर मजाक उड़ाया कि वो अलफ लैल भी बातें कर रहा है। लेकिन हर मर्तबा चंद दहाइयों के बाद उसी ख्याल पर मबनी साइंस की थ्योरी वजूद में आई और उस थ्योरी पर बुनियाद रखकर वो ईजाद वजूद में आ गई। तो इंसानी जहन की कुव्वत तखय्युला, कुव्वत ख्याल सबसे ज्यादा अहम है। इसी तरह अमाल के सिलसिले में इंसान सबसे पहले सोचता है कि मैं उठ के नमाज पढ़ लूं, ये एक सोच है उसकी, और अगर इस सोच पर वो कायम रहता है तो ये सोच इरादे में बदल जाती है कि वो इरादा करता है कि मैं 5 मिनट में उठ के नमाज अदा करता हूं। फिर ये इरादा उसका प्रैक्टिकल शक्ल इख्तियार करता है और वो उठकर वजू करके नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। अगर ख्याल ही ना आए तो नमाज किसी तरह अदा नहीं हो पाएगी। इसी तरह जो शख्स नेकी की राह पर चलना चाहता है उसके लिए लाजिम हो जाता है कि वो अपने ख्यालों को पाकीजा कर ले, उसके ख्याल उसकी सोच पाकीजा हो जाए। जब किसी इंसान के ख्याल और सोच या दूसरे लफ्जों में कहिए कि जहन पाकीजा हो जाएगा तो उसके अमाल खुद ब खुद पाकीजा होने लगेंगे। बदयानती दो शक्लों में होती है, इसकी दो किस्में हैं। एक फिजिकल डिसऑनेस्टी है कि मैं कोई चोरी कर लूं, मैं आपसे किसी किस्म का कोई धोखा आपको दे दूं, आपसे गलत बयानी कर लूं, ये सब डिसऑनेस्टीज ही की शक्ल है। और एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, वो ये है कि मेरी सोचों में धोखादही का आंसर शामिल हो जाए, गलत बयानी का, झूठ का आंसर शामिल हो जाए। इमरानियात और ह्यूमन साइकोलॉजी के माहरीन, उनके नजदीक फिजिकल डिसऑनेस्टी इतनी नुकसानदेह नहीं है, वो टॉलरेट की जा सकती है जितनी के इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। हालांकि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन उन लोगों के नजदीक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ज्यादा नुकसानदेह है। उसकी वजह यही है कि जब तक कि इंसान गलत सोचेगा नहीं, वो गलत कर नहीं सकता। अगर मैं रिश्वत लेने का सोचूंगा नहीं, तो मैं रिश्वत लूंगा भी कभी नहीं। अगर मैं चोरी के बारे में सोचूंगा नहीं, तो चोरी प्रैक्टिकली कभी करूंगा नहीं। तो यूं इंसान के जहन की कुव्वत तखय्युला ज्यादा अहम है बनिस्बत कुव्वत अदराक के। कुव्वत अदराक तो इंसान को यह बताती है कि क्या चीज क्या है। वो अपने सेंसेस से काम लेता है, उसके सेंसर्स वो इत्तला उसके दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग ये फैसला करता है कि क्या चीज क्या है। वो हमारी कुव्वत अदराक है। तो रूहानियत में भी पाकीजा अमाल के लिए जरूरी ये है कि हमारी सोचें पाकीजा हो जाएं पहले। तो जब किसी शख्स की सोच पाकीजा होती है और वो नेकी के बारे में सोचता है, और जब उसका ख्याल प्रैक्टिकल शक्ल लेता है, कोई नेक काम करता है, तो उसके जहन में एक खास केमिकल जनरेट होता है। और वो केमिकल ऐसा है जो इंसानी जल्द को चमक अता करता है। इसीलिए हम जब किसी नेक शख्स को देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसके चेहरे पर नूर है। वो चमक दरअसल उस केमिकल के जरिए इंसानी जल्द में आती है। तो नेक सोच पैदा करना होगी इसके लिए, उसके बाद हमारे अमाल खुद ब खुद नेक होते चले जाएंगे। जब ये नेकी दोनों तरह की, ख्याल की नेकी, सोच की नेकी और अमली नेकी इकट्ठी होगी, तो हमारी रूह बहुत लतीफ हो जाएगी, उसकी परवाज बेपना ऊंची होगी। और रूह जब वालिदगी के उस मकाम पर आती है, तो इंसान कश्फ में दाखिल हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में कहिए कि अल्लाह ताला इंसान पे रहमत करता है और उसे इनाम के तौर पर इजाजत मरहमत करता है कि वो अल्लाह ताला के कारखाने कुदरत की एक झलकी देख सके। और कारखाने कुदरत की झलकी देखने का सबसे अच्छा जरिया कश्फ है। गरचे रब ताला नेकी के इससे निचले दर्जे पर भी लोग जो फायज हैं, उनको भी अपने कारखाने कुदरत की सैर कराता है, और ख्वाब में उन्हें अपने कारखाने कुदरत की कोई झलक दिखाता है। कोई झलक कह रहा हूं, उसके टोटल कारखाने कुदरत का अगर एक अरबवां हिस्सा भी हम देख लें, तो उसके लिए भी हमें कई रातों के ख्वाब की जरूरत पड़ेगी जो मुसलसल चलता रहे। उसका कारखाना है कुदरत इतना वसी है। मसलन एक साहब अगर फलके अव्वल की सैर करते हैं, तो वहां उसे मुख्तलिफ चीजें देखने में मिलेंगी। वो वहां एक एंट्रेंस देखता है जिसमें चंद सीढ़ियां हैं। उस एंट्रेंस से आगे जब अल्लाह ताला उसे दिखाता है, तो कुछ बिल्डिंग्स के पीछे एक पर्दा सा उसे दिखाई देता है। उस पर्दे के पार जब चीजें दिखाई देती हैं तो वो मकाम याहिया देखता है कि वहां हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का मकाम है। वो उससे भी बियॉन्ड जब देखता है तो उसे एक पहाड़ी सी दिखाई देती है, वो असल में मलाइका है। और मलाइका में से हजरत इसराफील उस जगह के हाकिम हैं, वो इंचार्ज हैं उसके। और उससे बियॉन्ड जब देखता है तो एक और पहाड़ी मकाम दिखाई देता है, वो मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है। और उस पहाड़ी के पार अगर अल्लाह ताला तौफीक बख्श दे किसी को देखने की, जो कि मेरे इल्म में बहुत कम मौलिया कराम देख पाए, तो वो मकाम इब्राहिम दिखाई देता है। तो ये शहर है, उसके कारखाने हैं कुदरत की। इस तरह से ये तो ऐसी एक मिसाल के तौर पर मैंने पहले आसमान का जिक्र कर दिया आपसे। इस तरह वो अपने तमाम कारखाने हैं कुदरत को कश्फ के जरिए भी दिखा देता है, खुली आंखों के साथ दिखता है। इंसान बेदार हालत में उसकी सैर करता है, जानमाज पर बैठा हुआ जब जिक्र इलाही में मसरूफ होता है और कॉन्सेंट्रेशन की एक हद पर जाता है तो उसकी सैर शुरू होती है। बैठा तो है जानमाज पे लेकिन रूह उसकी सैर को निकली हुई मालूम नहीं कहां कहां घूमती फिरती है। ये कश्फ है। इसी कश्फ की फिर आगे बहुत सी किस्में हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला कश्फ शख्सी अता फरमा देता है कि वो जिस शख्स को देखते हैं उसके अहवाल से वाकिफ हो जाते हैं, उस शख्स के सोचों से वाकिफ होने लगते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला कश्फ कल्बी अता फरमा देता है, वो लोगों के कल्बी हालात से वाकिफ हो जाते हैं। लेकिन रब ताला एक काम जरूर करता है, क्योंकि वो सत्तार है, लोगों के ऐबों को पोशीदा रखता है, लोगों के राजों को पोशीदा रखता है। तो किसी भी शख्स को कश्फ अता करने से पहले इतना बड़ा जर्फ अता फरमा देता है कि वो इन तमाम चीजों को बड़ी खामोशी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जुबान पर बात आती ही नहीं कभी। और मजा उस वक्त आता है, इंसान खुद भी एंजॉय करता है उसको, जब एक शख्स बाहर खड़ा हुआ उसे गालियां दे रहा है, जब अंदर आता है तो उसको घुटनों को हाथ लगा के कहता है, ओ हजरत मैं तो आपका बड़ा अकीदतमंद हूं, मैं तो आपके लिए मर गया लुट गया। और इंसान दिल में एंजॉय कर रहा होता है कि बाहर ये खड़ा होकर अभी दो मिनट पहले मुझे गलीज गालियां दे रहा था और यहां घुटनों को हाथ लगा रहा। लेकिन जर्फ इतना देता है अल्लाह कि उसका इजहार इशारतन भी नहीं होने देता कोई शख्स। बात लंबी होती चली जाएगी अगर मैं इस जर्फ के हवाले से आगे बढ़ा। तो बात कैफुल कबूर की हो रही थी। जिस तरह से और बेशुमार किस्में हैं कश्फ की, इसी तरह कैफुल कबूर भी उसी कश्फ की एक किस्म है। ये दो चार दिन और एक आध जिक्र और वजीफे से नहीं होगा, बल्कि ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो तमाम उम्र फकीर का जारी रहता है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है जो राह हिदायत पाने के बाद से लेके कब्र तक जारी रहता है, और इसी सिलसिले में वो आगे से आगे आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये कहना दुश्वार है। अलबत्ता आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं जरूर ये अर्ज कर दूं कि हरूफ मक्तात 14 हैं तादाद में। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये पूरी कायनात की कुंजी हैं, पूरी कायनात इनमें समोई है। ये वो अल्फाज हैं जो तमाम कंट्रोल जो कायनात का है वो कंट्रोल अपने अंदर लिए हुए हैं। इन्हीं हरूफ मक्तात में ऐसा हर्फ भी है जो इंसान की बीमारियों से मुताल्लिक है, अगर उसको वर्द किया जाए तो रब ताला अपनी रहमत के सदके इंसान को ऐसी सलाहियत अता फरमा देता है कि वो शुरू में तो जिसको दम करता है वो सेहतयाब होता है, फिर नौबत यहां तक आती है कि वो किसी से सिर्फ अहवाल पूछ ले कि कैसे हो तो उसकी बीमारी चली जाती है। और उससे अगला दर्जा फिर अल्लाह जो अता फरमाता है वो ये है कि जिस कमरे में वो बैठा है उसके अंदर दाखिल होने वाले शख्स की बुखार या छोटी मोटे दर्द यह खुद ठीक हो जाते हैं, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। सिर्फ उसकी मौजूदगी, उसकी जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि लोग छोटी मोटी बीमारियों से निजात पाते हैं। انجی حروف مقطعات میں ایسا حرف بھی ہے جس سے بڑا وسیع رزق عطا ہوتا ہے. اس حرف کا ورد کیجیے آپ ایک مخصوص دن اور مخصوص وقت پر تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, وسیع رزق آنے لگتا ہے. انہی میں ایسا حرف ہے جو انسان کو کشف عطا فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں کشف عطا فرماتا ہے. پھر یہی حروف ہیں, ایک طرف تو یہ ان تکالیف کا مداوع ہیں, دوسری طرف یہی حروف ہیں کہ اگر کسی کا مرشد صاحب علم ہے تو وہ انہی حروف میں سے ایک حرف دے دے گا اور وہی اسے ولایت کے اعلیٰ ترین مقامات تک لے جائے گا اگر اس نے مسلسل پڑھ لیا. لیکن یہ حروف پڑھنا ایک بات ہے, ان کی بنیاد ان کو فراہم کرنا, پری ریکویزٹس اس کی پوری کرنا ایک بات ہے, اور وہ خیال کی پاکیزگی ہے کہ انسان کا ذہن پاک ہو, اس کے اندر جو زہر قاتل ہے وہ نہ صرف یہ کہ بدلہ بلکہ بدلے کی سوچ بھی زہر قاتل ہے. انتقام بذات خود تو بہت دور کی بات ہے, انتقام کا سوچنا بھی زہر قاتل ہو جائے گا. وہ شخص کبھی ولایت کے مقام پر نہیں پہنچے گا جس شخص کے اندر انتقام کا جذبہ ہے یا انتقام کی سوچ ہے. اس سوچ کو ختم کرنا پڑتا ہے, جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا پڑتا ہے کہ کسی طور بھی انتقام کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے. اور دوسرے درجے پر جو نقصان دہ چیز نکال کے پھینکنی پڑتی ہے دل سے, وہ ہے اپنے دشمنوں کے بارے میں برا سوچنا. برا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, اپنے حقوق فورگو کر دینے پڑتے ہیں. تیسرے نمبر پر باپ ایک ورثہ چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا, بہن بھائی حصہ نہیں دیتے, تو بجائے اس کے کہ بہن بھائیوں کے پاس جا کے اس کا تقاضا کرے, چاہے جائے کہ کورٹ میں جانا, فقیر کو یہ بھی سزاوار نہیں ہے. وہ تو بڑی خوش دلی سے ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ بھائیوں کون سا حصہ, وہ سب آپ کا ہے, میرا کچھ نہیں, میرے لیے میرا رب کافی ہے. اور رب اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے ایسے انسان کے لیے. تو یہ سب کام ہم کریں گے تو خیالات میں پاکیزگی آئے گی, خیالات کی پاکیزگی نیکی کی طرف لے کے جائے گی, اور نیکی اختیار کرنے کے بعد اگر ان حروف کا ورد کیا تو وہ ہمیں کشف تک لے جائیں گے, کشف حاصل ہو جائے گا. لیکن بنیاد خیال کی پاکیزگی ہے. تو میں ابھی سلسلے میں کیا عرض کروں کہ کون سی ایکٹیویٹی آپ کریں کہ کشف القبور حاصل ہو جائے. اب اگر میں اس سے واقف ہوتا کہ بابا بلے شاہ نے رب کو منانے کے لیے کہا تھا کہ میں ڈانس کر لوں, تو میں بھی کوئی ایسی سجیشن آپ کو دے پاتا. لیکن میں تو خود واقف نہیں ہوں بھائی, میں خود اسی تلاش میں پھرتا ہوں, کوئی نیک آدمی مل جائے تو میں اس سے کچھ نیکی حاصل کر کے نیک ہو جاؤں. تو آج تک میں بھی اسی تلاش میں پھر رہا ہوں. ایک اور علمی سوال ہے, فلسفہ وحدت الوجود کے بارے میں کچھ عرض کریں. کیا ابن عربی سے پہلے بھی اس فلسفے کا وجود یا کچھ چاہنے والے تھے؟ قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال اس فلسفے کو مانتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا, کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہمارے اسلاف سلسلہ چشتیہ, سلسلہ قادریہ, سلسلہ قلندریہ, کون کون سے حضرات اس فلسفے کو مانتے تھے, یا اس پر ان کی زندگی عمل پیرا تھی؟ کیا قرب الہی کے منازل کو اس فلسفے میں رہ کے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کئی سوال ہیں یہ. اصل میں غور و فکر کی دعوت رب نے دی ہے مسلمان کو. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم پر عیاں ہوتی ہیں. اکثر اوقات وہ چیزیں اس قدر بلند ہوتی ہیں کہ ہماری عقل ان تک پہنچ نہیں پاتی, ہماری عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. तो हम भटकने लगते हैं। नुक्ता सही होता है, पहुंचे भी हम सही जगह होते हैं, लेकिन हमारी अक्ल उसका अहाता नहीं कर पाती। नतीजा यह होता है कि हम भटकते हैं। फलसफा वादतुल वजूद और फलसफा वादतुल शहूद, ये दो फलसफे वजूद में आए। वो वजूद में किस तरह आए कि कुछ लोगों ने तौहीद पर गौर फिक्र शुरू किया, कुछ लोग अपने ख्यालों में इस कदर मजबूत हो गए, अपने ख्याल पर इस मजबूती से आगे बढ़े कि अल्लाह एक है और हर चीज उसी से है, कि वो बढ़ते बढ़ते जिस तरह के हर चीज में होता है कि उसकी इब्तदा कुछ होती है और इंतहा में जाके वो अपनी असल से हट के कुछ शक्ल ले जाती है। तो लोगों ने ये कहा कि हर चीज में रब बसता है, हर चीज उसी रब का हिस्सा है, क्योंकि उसी रब का जुज्व है, उस कुल का जुज्व है, इसलिए ये चीज इसमें भी रब है। उन्होंने हर चीज को रब का मजहर मान लिया। एक दूसरा मकतबा फिक्र जो था, उसने तौहीद को इस तरह से समझा कि रब अपनी जात में वाहिद है, अपनी सिफात में वाहिद है, और चूंकि तमाम तखलीक उसकी है तो उसकी तमाम तखलीकात में उसका अक्स दिखाई देता है। ये दोनों फलसफों में फर्क था, वादतुल वजूद और वादतुल शहूद में। ये मोहम्मद इब्ने अरबी के दुनिया में आने से बहुत पहले यह फलसफा वजूद में आ चुका था और इस पर खास इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मोहम्मद इब्ने अरबी जब दुनिया में आए और उन्होंने इस पर रिसर्च की और सैर हासिल बहस की अपनी किताबों कि फलसफा वहदतुल वजूद है क्या असल में, तो चूंकि उन्होंने इसे एक थ्योरी की शक्ल दी और सबसे मुस्तनद और लॉजिकल फॉर्म दे दी मसला वहदतुल वजूद को, इसलिए मसला वहदतुल वजूद मुंसलिक हो गया हजरत मोहम्मद इब्ने अरबी से, जो इब्ने अरबी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। बाद के आने वाले जमानों में यह हुआ कि इसी मसले पर मुसलमानों में इख्तलाफात बहुत बढ़े और उन इख्तलाफात के नतीजे में कत्ल गारत बहुत हुई, मुसलमानों का खून आपस में बहुत बह गया। औलिया किराम खा किसी मसले से क्यों ना वाबस्ता हों, चाहे किसी सिलसिले से ताल्लुक रखते हों, वो किसी का खून बहाने में यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ सलामती के लिए काम करते हैं और इसमें मुसलमान की भी कोई तशखीस नहीं, वो हिंदू हो या काफिर हो या यहूदी हो, ईसाई हो, कोई हो, वो सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए उनके लिए वो मोहब्बत का सच्चश्मा बनते हैं। इसलिए कोई किस मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखता था, वादत वजूद को मानता था या वादत शहूद को मानता था, उन्होंने इसका इजहार बिल्कुल नहीं किया। इंसान, आई होप कि लंबा नहीं हो जाएगा ये मसला, असल में इंसान जब वजूद में आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठ जाने के बाद, इंसान के अंदर हैवानी सिफात ज्यादा गलबा पा गई। रहा तो वह इंसान, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरी करना रह गया, जो कि हैवानी जबिल्लत है। यहां से फिर जब दूसरे पैगंबर तशरीफ लाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद और अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक आता रहा मुसलसल, तो इंसान के जहन की डेवलपमेंट के साथ एक तब्दीली ये आई कि कुछ लोग सिर्फ रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने से बुलंद हुए और उन्होंने ऐसी सोचें सोचनी शुरू कर दी जिससे वो दूसरे इंसानों से बेहतर नजर आए और वो इंटेलेक्चुअल लेवल तक जाने लगे। लेकिन इंसान के इर्तका का अमल यहीं रुक नहीं गया, बल्कि जिंदगी में बादुल मौत का तसव्वुर अल्लाह ने दिया और जिंदगी में बादुल मौत के लिए इंसान मौजूदा जिंदगी में काम करने लगा। तो यूं इंसान की रिक्वायरमेंट तीन हिस्सों में बट गई, एक उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, एक उसकी इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट और एक स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट। तो इन तीनों का मजमुआ जो है वो मुसलमान कहलाया, कि जो इन तीनों चीजों को लेके इकट्ठा चले वो मुसलमान है, या मुस्लिम इज सपोज टू गो बाय लाइक दीज थिंग्स, यूं कह लीजिए। हमने किया या नहीं किया वो एक और बात है, लेकिन मुसलमान से तो को ये है कि वो इन तीनों चीजों को साथ साथ लेके चलता है। ये जो दूसरी स्टेज थी इंसान की, जहां वो इंटेलेक्चुअल लेवल में दाखिल हुआ, तो उसको ये एहसास हुआ कि मेरे दिमागी कुवतें मेरी बहुत हैं, दूसरों से ज्यादा हैं। तो यूं उसके अंदर, क्योंकि इंसान जबिल्लत में हिर्स है, हिर्स कई तरह की हो सकती है, लेकिन मैं उसे दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक मेटेरियलिस्टिक हिर्स है, मेटेरियल चीजों के बारे में है, और एक इंटेलेक्चुअल हिट्स है। मेटेरियल चीजों की हिट्स बहुत है इंसान में, लेकिन इंटेलेक्चुअल हिट्स उससे भी ज्यादा है। तो इंसान ने ये चाहा कि मैं दूसरे इंसानों से सुपीरियर नजर आऊं और उन पर मुझे गलबा हासिल हो जाए। और यूं एक इंसान की दूसरे इंसान पर हुकूमत करने की ख्वाहिश जागी। तो जो जो इंसान अपनी इंटेलेक्चुअल रिसर्च में आगे बढ़ा और अल्लाह ताला की तरफ से मुसलसल इंसान की बेहतरी के लिए पैगंबर आते रहे, वो अल्लाह का पैगाम लाते रहे, और अल्लाह मुख्तलिफ पैरामीटर्स इंसान की जहनी सतह के मुताबिक वो पैरामीटर्स को बहा के पैगंबरों के जरिए नीचे उतारता रहा। तो यूं एक वक्त आया कि ये जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग था, ये वर्चुअस की तरफ चला गया कि मुझे सच बोलना है, मुझे दगा नहीं देना, धोखा नहीं देना, मैंने लोगों के काम आना है। ये वर्चुज हैं, सब सिस्टम नहीं है। तो इंसान जब इन वर्चुज की तरफ गया और उन वर्चुज पर उसने अमल करना शुरू किया, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ राइटियसनेस पैदा हो गई कि मैं बहुत सही हूं, दूसरों से ज्यादा सही हूं मैं। ये जो सेंस ऑफ सेल्फ राइटियसनेस थी, इसने इंसान के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया, और ग्रेजुअली वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एरोगेंस में तब्दील हुआ। उस एरोगेंस ने इंसान को तबाही की तरफ धकेल दिया, जिसको हम तकब्बुर कहते हैं। तो औलिया इकराम ने उस तबाही से सबक सीखा, और रब ताला ने भी फरमाया कि तकब्बुर से बचो। तो अल्लाह के उस हुक्म की तामील में और अपने तजर्बे की वजह से वो तकब्बुर से दूर हुए। जो ही तकब्बुर से दूर हुए, तो रब ताला के बारे में एक नया कंसेप्ट उन्होंने डिस्कवर किया कि रब मोहताज नहीं है हमारे अमाल का कि हमें हम पर रहमतें नाजल फरमाए। ये उसकी शान रहमानियत है, शान रहीमी है कि वो जिस पर चाहता है रहमतें नाजल फरमा देता है। तो इंसान को ये एहसास हुआ कि ये जो मैं राइटियसनेस के चक्कर में पड़ा हूं, यह तो मुझे दरहकी के तबाही की तरफ अल्टीमेटली ले आती है। तो यूं इंसान सवाब और गुनाह के तसव्वुर से ऊपर गया कि मुझे ये सब इसलिए करना है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि इन चीजों पर अमल करो। इसके जवाब में गुनाह होता है, ये सवाब होता है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये रब का प्रॉब्लम है, रब जाने उसका काम जाने, मैं तो सिर्फ अपने रब की इताअत करूंगा। तो यूं गुनाह और सवाब से बाला होकर इंसान रब की इताअत की तरफ चला गया। और जिन लोगों ने गुनाह और सवाब से बाला होकर रब की इताअत की और उसके तयकरदा रास्ते पर चले, उसके तयकरदा डूज एंड डू नॉट्स पर अमल किया, उसके सेट किए हुए पैरामीटर्स के अंदर जिंदगी गुजारी, उन पर जब अल्लाह की रहमतें हुई तो आम आदमी के लिए वो अचंभे का बाइस थी और आम आदमी ने उसे औलिया कराम का नाम दे दिया। तो औलिया कराम इंसान का वो ग्रोह है जो रब की इताअत करता है महज इसलिए कि उनके रब का हुक्म है, इसीलिए वो मसला वादत वजूद और मसला वादत शहूद से बालातर हो गए। तो कोई वली अल्लाह ऐसा नहीं जो इस फलसफे से गवर्न होता हो। इल्म तो हासिल करता है वो ये जानने के लिए कि कोई चीज क्या है, रूहानियत में मर्द कामिल की तारीफ क्या है। रूहानियत में मर्द कामिल वो है जो हमें वक्त इल्म की तलाश में रहता है, ये मर्द कामिल है रूहानियत में। तो इल्म की तलाश तो उन्होंने की, इसको जाना तो जरूर बतौर इल्म के, लेकिन इससे गवर्न नहीं हुए। तो जब इंसान गवर्न नहीं हुआ तो कैसे ये कहा जा सकेगा कि वो वाहदतुल वजूद का मानने वाला था या वाहदतुल शहूद का मानने वाला था। इनका तो मजहब सिर्फ एक था, अपने रब की गैर मशरूत इताअत। और आज भी फकीरों का एक ही मसलक है, अपने रब की गैर मशरूत इताअत, टोटल सरेंडर जिसे हम कहते हैं, एब्सोल्यूट सबमिशन। तो इसलिए किसी भी वली अल्लाह के बारे में कहना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा कि कौन किसका पैरोकार था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यकीनी तौर पर एक जमाने में वहदतुल वजूद के मानने वाले रहे हैं, लेकिन जो जो उनके जहन की ग्रहें खुलती गई हैं और उन्होंने इर्तकाई मनाजिल तय की हैं, वो इस मसले से दूर हो गए। और फिर जैसे दूसरे औलिया किराम इन तमाम चीजों से बालातर होकर रब की इताअत करते हैं, तो वो भी ऐसे मसलों से बालातर हो गए थे। ये जो आखिरी हिस्सा है सवाल का कि क्या कुर्ब इलाही की मनाजिल को इस फलसफे में रहकर हासिल किया जा सकता है, अब कुर्ब इलाही को मेरे नजदीक तो सिर्फ और सिर्फ उसकी गैर मशरूत इताअत से हासिल किया जा सकता है। एक उसकी गैर मशरूत इताअत कपल्ड विद इंसानों की वेलफेयर का ख्याल, अल्लाह के दूसरे बंदों की वेलफेयर का ख्याल भी और वेलफेयर के लिए कोशिश भी। ये दो चीजें अगर इकट्ठी हो जाएं तो कुर्ब इलाही यकीनी तौर पर इंसान को मिल जाता है। एक और सवाल कि सिख मजहब में फरीदी सिख क्या होती हैं और बाबा फरीद सरकार से उनका क्या ताल्लुक है। सिखों के गुरु जैसे हम सबको पता है कि आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बाबा नानक ने अपने अंदाज में हज भी किया था। बाबा फरीद ने शकर रहमतुल्लाह अलैह साहब के मानने वालों में सिखों की एक बड़ी तादाद भी थी और इन लोगों के दुनिया से उठ जाने के बाद भी जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब के मजार पर बेपनाह हिंदू हाजिरी देता है, सो मच सो कि वहां अजमेर शरीफ में रहने वाले हिंदू अपने कारोबार पर जाते हुए भी फातिहा पढ़कर जाते हैं अपने अंदाज में, अपने अकीदे के मुताबिक वहां हाजिरी दे के जाते हैं और दुकान बंद करके जब घर जाते हैं तो रास्ते में फिर वहां हाजिरी दे कर जाते हैं। तो वो लोग जो अकीदत में बहुत आगे चले गए उन्होंने अपने नाम के साथ फरीदी का इजाफा कर लिया बाबा फरीद साहब के नाम के निस्बत से। तो वो फरीदी सिख कहलाते हैं। ये कोई अलहदा उनके यहाँ फिरका नहीं है, सिर्फ ये अकीदत की वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ लगाया हुआ है। एक सवाल है कि तंगदस्त और मुश्किल ज़दा शख्सियात को हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पत्थर, मसलन मोती, अकीक, सुलेमानी, नीलम वगैरह पहनने का मशवरा दिया और पत्थर पहनने का जिक्र कहीं कुरान में मौजूद है, क्या कोई हदीस से वाज़ेह है? हमारे असलाफ और खास तौर पे साहबा इकराम अपने अकीदे और अपने मजहब और अपने मसलक में इतने मजबूत थे कि उन्होंने कभी ऐसी चीजों का सहारा लिया ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ऊपर हैं, सबसे बुलंद हैं अल्लाह के बाद, उनके साहबा कराम भी इस कदर मजबूत शख्सियात थी कि वो ऐसी चीजों के पीछे कभी भागे ही नहीं। शायद दो या तीन ऐसी मिसालें हैं पूरी मक्की और मदनी जिंदगी में जहां दो या तीन साहबा ने अपनी तंगदस्ती का जिक्र किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वरना साहबा किराम जुबान पर कभी ये बात लाए ही नहीं कि हम तंगदस्त हैं, हम फाका ज़दा हैं, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं हमसे कि साहबा किराम में से अक्सरियत उनकी थी जो बेचारे के कि रोज तक खाना नहीं खा पाते थे। खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक के मौके पर दो पत्थर पेट पर बांधे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हम फाके से हैं, इसलिए कि ये इस बुलंदी पर थे कि इनके नजदीक ये कहना ही ना शुक्रगुजारी था। ये तो हम कमजोर लोग हैं जो जरा सी मुश्किल पर चिल्ला उठते हैं, हम अपने हालात पर रोते हैं, हम अपने हालात का रोना रोते हैं, जगह जगह दुआ के लिए जाते हैं, मन्नतें मानते हैं। जरा हम में से कोई आदमी दिल पर हाथ रख के ये कह दे कि क्या हम उससे ज्यादा अफलास ज्यादा हैं जो वक्त साहबा कराम ने देखा है? क्या हम उससे ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं जो साहबा कराम ने सही हैं? क्या हमारी लिविंग उससे ज्यादा डिफिकल्ट है जो साहबा कराम ने गुजारी है? हम तो उन मुश्किलात का अशीर भी नहीं देखते, लेकिन उसके बावजूद वहां ऐसे तवहमात का कोई गुजर ना हुआ कभी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक बड़े शौक से पहना है, हजरत अली करमल्लाह जो भी अकीक पहनते थे, लेकिन उसके पीछे कतई तौर पर यह ख्याल नहीं था कि मैं अकीक पहनूंगा तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, मैं नीलम पहन लूंगा तो मुझे इज्जत मिल जाएगी, और अगर मोती पहन लूंगा तो मुझे तख्त मिल जाएगा, ये ख्यालात नहीं थे। अगर किसी चीज को उन्होंने बाबरकत कहा भी है साहबा इकराम ने, तो बाबरकत होने से कतन ये मुराद नहीं थी उनकी कि इससे रिस्क खुल जाएगा, इसलिए कि शिर्क की एक फॉर्म है। राजिक सिर्फ और सिर्फ रब है, पत्थर तो बेजान चीज है, इसकी क्या मजाल किसी वली अल्लाह और किसी अवतार की भी ये हिम्मत नहीं है कि रब ताला के सामने किसी की सिफारिश कर दे उसके हुक्म के बगैर। राजिक और मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ रब है, जब वो किसी को कुछ अता करना चाहता है तो किसी में ये ताकत नहीं कि उसे रोक ले, और अगर वो अता न करना चाहे तो किसी में ये ताकत नहीं कि वो हमें हासिल कर दे। जब जानदार कुर्ब इलाही रखने वाले लोगों में ये ताकत नहीं तो ये बेजान पत्थर बेचारे क्या कर पाएंगे? अलबत्ता इनकी साइंसी तौजीहात मौजूद हैं कि वो बाबरकत किन मायनों में हम कहते हैं। एक तरीका इलाज आज से तकरीबन 1000 साल पहले राइज था, वो रंगों से इलाज उसको कहते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदुओं के मकान में किसी एक कमरे में रंगीन शीशे जरूर लगे होते हैं, और आमतौर पर ये वो कमरा होता है जहां उनकी, जिसे हम सिटिंग रूम कह सकते हैं, लाउंज, लिविंग रूम भी उसे आप कह लीजिए। वो होता यूं है कि सूरज की शुआएं जब उन शीशों से गुजरती हैं, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि सूरज की शुआएं एक स्पेक्ट्रम है और उस स्पेक्ट्रम में 7 रंग हैं। तो जब किसी एक रंग के शीशे में से वो शुआएं गुजरती हैं तो वो उस रंग के अलावा बाकी शुआएं एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर कोई शख्स उस शीशे के सामने रोज 1 घंटा बैठेगा तो उसके जिस्म पर सिर्फ वही रंग आएगा, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। दरहकीकत वो सूरज की शुआएं हैं जिसमें से बाकी रंग निकाल लिए गए हैं, सिर्फ उसी रंग की शुआ उस तक पहुंच रही है। तो उस शुआ के इंसानी जिस्म पर रोजाना एक मखसूस वक्त के लिए पढ़ने से जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसके अंदर तब्दीली वाकई होने लगती है और ह्यूमन बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होने लगती है और यूं बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता है। ये हिंदुस्तान में ये तरीका राइज हुआ था और हिंदुओं के जो वैद्य होते हैं, उसको हकीम कह लीजिए, हिंदू का हकीम, उन्होंने ये तरीका आज से तकरीबन 1100-1100 साल पहले ये राइज किया था कि जैसे किसी शख्स को अगर कैंसर है तो ऐसा कमरा जिसके इर्द गिर्द नीले रंग के शीशे लगे हैं जिसमें, वहां अगर उस आदमी को रोजाना 3 घंटे बिठा दिया जाए तो आमतौर पर उसका कैंसर ठीक हो जाता है। अब ये मत कीजिएगा कहीं क्लिनिक खोल के बैठ जाए ब्लू क्लिनिक के साथ, यहाँ कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। ये जो इल्म लुदनी है इससे इंसान को बहुत कुछ हासिल होता है। ये तमाम अलूम की माँ है, अयाता करता है ये इल्म लुदनी तमाम अलूम का। तो जिस शख्स को ये इल्म अल्लाह अता फरमाता है वो ग्रेजुअली इन तमाम अलूम से वाकिफ होता चला जाता है। मेरे एक अजीज हैं जो बहुत स्टॉन्च किस्म के अहले हदीस हैं और औलिया इकराम से ये लोग दूर रहते हैं, उसमें मैं उसे बुरा नहीं समझता क्योंकि उनके अपने अकीदे का मामला है। तो मुझे हैरत उस दिन हुई जब ये अजीज मेरे पास एक दिन तशरीफ लाए और मुझे कहने लगे कि सुना है आप किसी वली अल्लाह के पास जाके बैठते हैं आजकल। जहां जाता तो हूं मैं, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तो मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि ये तो बहुत ही शिद्दत पसंद है अपने मसलक में। बिल्कुल, मैं उनसे इजाजत ले लूं फिर आपको ले जाऊंगा। तो मैंने जब वो अपना रिश्ता बताया उनसे तो मेरे मुर्शिद साहब ने कहा कि हाँ जरूर लेकर आओ। तो नेक्स्ट डे मैं उन्हें ले गया, जाके तारफ करा के खुद चला गया कि शायद कोई जाती बात करना होगी, मैं यहाँ क्यों बैठूंगा। तो उसके बाद फिर मेरे और मेरे उन अजीज के दरमियान कभी इस मौजू पर बात नहीं हुई कि वो शाह साहब से मिलते भी हैं या नहीं। शाह साहब दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो मैं उनकी जगह बैठा करता था। तो एक दिन फिर ये अजीज तशरीफ ले आए और कहने लगे कि आपके मुर्शिद बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैंने कहा जी इसमें तो शक नहीं है कोई। कहने लगे नहीं, मैं जिस एंगल से कह रहा हूँ वो मुख्तलिफ है कि मुझे मुख्तलिफ औलिया इकराम ने एक बात ये बताई है कि वो जाते हुए अपने साथ कुछ नहीं लेके गए, सब कुछ आपको अता कर गए। तो मैंने कहा जी इसमें भी शक नहीं, मुझे भी कई एक औलिया इकराम ने ये कहा है कि आपके मुर्शिद बड़े मेहरबान थे कि इंतकाल से 3-3.5 महीने पहले ही अपना सब कुछ मुझे अता फरमा दिया था। तो कहने लगे आपको मालूम है मैं आपसे कहकर गया था शाह साहब के पास। मैंने कहा जी हाँ, कि वो आपको इल्म नहीं, मैं रोजाना उनके पास रात को जाया करता था, जब आप उठ के चले जाते थे तो फिर मैं जाता था। तो मैं उनसे ये कह रहा था क्योंकि मुझे सोना बनाने का बहुत शौक है, तो मैं उनसे ये कहता था मुझे सोना बनाना सिखा दें। तो जब मैं उनके पास हर रोज 6-8 महीने जाता रहा तो एक दिन वो तंग आ गए, कहने लगे अच्छा मियाँ तुम नहीं टलते तो कल रात को जब सब सो जाएं तो आ जाना, मैं तुम्हें सोना बनाना सिखा दूंगा। तो ये साहब वहां गए तो शाह साहब इनसे बातें करते रहे और मुख्तलिफ चीजें उठा उठा के स्टील के बाउल में डालते रहे। वो स्टील का बाउल उन्होंने हीटर पर रखा हुआ था। थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा कि उबलता हुआ सोना बन गया, तो उसको ठंडा किया और शाह साहब ने कहा कि लो चेक कर लो इसको कि असली है या नकली। तो इन्होंने चेक किया, उसको असली था। तो फिर बातों में लगा लिया शाह साहब ने इन्हें, बातों में लगाए लगाए वो बाउल दोबारा हीटर पर रखा। जब वो माया बन गया सोना, तो उठा के उसे इनके सामने नाली में उडेल दिया। तो ये इस बात पे सटपटाए, कहने लगी ये क्या। उन्होंने कहा कि मियां इसकी हकीकत यही है, इसकी कीमत सिर्फ इतनी है कि नाली में बह जाए, इससे ज्यादा इसकी हकीकत कोई नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चूंकि वो अपना सब कुछ आपको अता कर गए हैं, तो सोना बनाने की थ्योरी भी आपको दी होगी, तो ये मुझे दे दीजिए। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि हजूर हाथ बांध के गुजारिश है कि जो काम मेरे मुर्शिद ने नहीं किया वो मैं कहां से करूंगा। तो वो उनकी जिद कायम रही, लेकिन ये मैंने उनसे कभी इकरार नहीं किया कि मुझे पता भी है या नहीं। बात यह है कि हम इल्मे लुदनी की बात करते हैं, लेकिन उसका जिक्र करते करते बहुत से मकाम ऐसे आते हैं जहां मुझ जैसा इंसान उसके कान खड़े होते हैं कि ये तो पैसा कमाने का बड़ा अच्छा जरिया है, इसी क्यों ना अपना लूं। तो ये रंगों से इलाज शुरू न कर दीजिएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा। एक बात तो मैंने कह दी कि कैंसर का इलाज नीले रंग से होता है, लेकिन कैसे होता, कितने घंटे उस मरीज को वहां बैठना है, इस दौरान उसने पानी पीना है या नहीं पीना है, और उस धूप की उस रंगीन कमरे से निकलकर जब वो घर जाएगा तो वो पिया क्या करेगा, उसका पानी किस रंग से बनाया जाएगा, कैसे बनेगा, ये सब आपको नहीं पता चलेगा। तो ये ना हो कि ये इलाज करते करते कोई नुकसान कर बैठे, तो बजाय कमाने के देना पड़ जाए आपको कुछ। इंशाल्लाह अगली इतवार बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है।